ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அபி ஐசா ஹோதா ஹை, மேல பக்கல் லியா. कैदी बना ले, कैदी बना, जेल में रख, अब क्या करोगे? फांसी में लटकाएंगे. और ये सब बातें चल रही है कहां? स्वप्न में. मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, जीतने वाला राष्ट्रपति और पराजित युद्ध कैदी बना राष्ट्रपति दो राष्ट्रपति है? नहीं, दो तो नहीं है, है तो एक ही. समझना साहब, एक ही है मगर फिर भी अलग अलग जीतने वाला हारने वाला दिखाई देता है. वो युद्ध कैदी बना, कैदी मतलब वो जीवात्मा, जन्म और मृत्यु के चक्र में कैदी बना, दिखाई देता, अलग दिखाई देता, अलग है नहीं. तो स्वप्न में जो राजता है उसको, मगर जब स्वप्न खत्म हुआ, हे ये तो मेरा स्वप्न था, ना तो मैं ओबामा था, ना तो मैं युद्ध कैदी था, मैं तो स्वप्न का दृष्टा था और मैं तो एक ही हूं, फिर भी भिन्न भिन्न पात्रों में दिखाई दे रहा था. ऐसे ही कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो अवशिष्यते. जो कार्य और कारण दोनों की उपाधि, दो पात्र चले जाते हैं, तो अभिनेता तो है एक ही होता है और वो अभिनेता सच्चिदानंद स्वरूप होता है, ऐसा साक्षात्कार होता है, ऐसा शंकराचार्य भगवान हमें समझाते हैं. तो स्वात्मानम एव अद्वयम, ऐसी विचारणा हमको करना है. जब करेंगे तब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा, और अगर दिखाई देगा तो दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, तुल्यम निजांतर्गतम, अंदर जगत होते हुए भी जैसे दर्पण में नगरी दिखाई देती है ऐसा ही जगत दिखाई देगा, सत्य नहीं दिखाई देगा. यानी जगत प्रतिबिंबित दिखाई देगा, जगत भासेगा, मगर वो सत्य नहीं समझा जाएगा. क्यों? साक्षात्कार होने के बाद. और अद्वैय ब्रह्म मैं हूं और मेरे अलावा अगर और कुछ नहीं है तो ये विश्व की कल्पना कहां होती है? मैं अभेद हूं, अगर मैं अभेद हूं तो उपाधि कहां? ना ईश्वर की उपाधि है, ना जीव की उपाधि है, मैं तो निरुपाधिक आत्मतत्व हूं. मैं असंग हूं तो विश्व का वैभव कहां? मेरे लिए नहीं है. अगर मैं अचिंत्य हूं तो संसार का समूह मेरे लिए कहां है? मैं तो अचिंत्य हूं. मगर ये अनुभूति होती है, यह साक्षात्कार कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान में वादेव, यह साक्षात्कार कुरुते, मैं सर्वकाल में सर्व देश में सर्वगत हूं, ये अनुभूति है. अद्वयम सर्वात्मकम शिवस्वरूपोहम, सर्वात्मकम शिवस्वरूपोहम, ये अनुभूति का नाम है आत्म साक्षात्कार. ऐसा साक्षात्कार जिसकी कृपा से हमको होता है, ऐसे सद्गुरु को मेरा बार बार नमन है. तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम श्री दक्षिणा मूर्तये. ऐसे दक्षिणामूर्ति स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं. ये श्लोक है, इसमें दो चरण है, प्रथम दो पंक्ति के एक चरण, दूसरी दो पंक्ति के एक चरण. प्रथम लाइन में, दो लाइन में, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, पश्यन्नात्मनि माया बहिर्यो, ठीक है, ये दो लाइन प्रथम है. तो इसमें क्या हमको निरूपण किया गया, क्या समझाया गया है? पश्यन्नात्मनि माया बहिर्यो भूतम यथा निद्रया. तो यथा निद्रया ये शब्द संकेत देकर जीव भाव का संकेत दिया गया है पहली दो पंक्ति में. यथा निद्रया, जैसे निद्रा के अंदर, यानी स्वप्न में, स्वप्न सृष्टि तो हमारे भीतर होती है, फिर भी वो स्वप्न सृष्टि बाहर दिखाई देती है. क्योंकि स्वप्न अगर मैं देखता हूं, स्वप्न में अगर मैं जंगल में हूं और स्वप्न में सामने से हाथी आता और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूं, तो पेड़ पर चढ़ने वाला मैं, डरने वाला मैं, हाथी बना वो भी मैं, और हाथी से डर के पेड़ के ऊपर चढ़ने वाला वो भी मैं, ऐसा स्वप्न में देखता भी हूं और स्वप्न में अभिनय भी करता हूं। हाथी का अभिनय भी मैंने किया और हाथी के डर से भागकर पेड़ में चढ़ा, वो भी तो मैं हूं ना। अब समझिए साहब, तो त्वम पद है, इसकी बात बताई गई, यथा निद्रा, इतना ही शब्द प्रयोग किया। तो वहां पर जीव का निर्देश है कि जो जीव भाव है वो जीव क्या करता है, स्वप्न में जैसे सृष्टि अंदर होते हुए भी वो तो ऐसा ही मानता है मैं जंगल में हूं, सामने से हाथी आया तो जंगल कहां दिखता है, बाहर, हाथी कहां दिखता है, बाहर। ऐसे ही जीवात्मा जागृत अवस्था में पूरी सृष्टि, पूरा जगत मेरे भीतर होते हुए भी जगत को मैं बाहर देखता हूं। जब बाहर देखता हूं तो जिसमें राग होता है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूं, जिसके बारे में मुझे द्वेष है उसे दूर भागने का भी प्रयास मैं करता हूं, तो राग और द्वेष भाग दौड़ में जीवन में व्यतीत करता हूं। ये जीवात्मा की बात यथा निद्रा करके हमको समझाई गई। तो ये जो जागृत अवस्था में जीवात्मा कैसा है, मायाग्रस्त है। मायाग्रस्त जीव ईश्वर अंदर होते हुए भी बाहर देखता है, ऐसी जीवात्मा की बात पहली दो पंक्ति में बताई दी। फिर आखिरी दो पंक्ति आई हमारे सामने, यत साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान एवाद्वयम तस्मय श्री गुरुमूर्ति, तो वहां साक्षात्कार कर दिया गया। तो दूसरी दो पंक्तियां उसमें तत्पद की बात की गई, पहले तोमपद की बात बताई गई, और वहां पर यह कहा गया कि वही जीवात्मा अज्ञानी जो कर्ता भोक्ता मानने वाला था, और वही जीवात्मा अब क्या करता है, साक्षात्कार करता है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय, और अपने को जीव और ब्रह्म का ऐक्य अनुभव करता है, और स्वात्मानम एव अद्वयम। तो त्वम पद जो है जीवात्मा है वही तत्पद वाचार्थ लक्षार्थ है और उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, ये हमें वहां पर समझाया गया है। तो तत्पद लक्षार्थ रूप के द्वारा ही साक्षात्कार होता है, ऐसी एक बात ये मंत्र के द्वारा दो चरण में हमें समझाई गई है। और ऐसा साक्षात्कार जिसकी कृपा से होता है उसको नमन किया है, श्री दक्षिणा मूर्तये इदम नमः। तो ये दक्षिणा मूर्ति कौन से देव है, ये सचमुच समझना है तो आपको बहुत चीज पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, दक्षिणा मूर्ति एक संहिता है, दूसरा है दक्षिणा मूर्ति पंचांग है, तीसरा है दक्षिणा मूर्ति सहस्त्र नाम है, चौथा है दक्षिणा मूर्ति दीपिका है, और एक ये है दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र। ये सबका सार मिलाएंगे तो पता चलेगा कि दक्षिणा मूर्ति यानी कौन से देव। मगर आप झंझट छोड़ दीजिए ना, आपको तो खाली एक दिन आना है, ये सब किताबें तो हम रटेंगे, हम पढ़ेंगे, और हमारे पास जो होगा आपको मुफ्त में दे देंगे। आप झंझट में मत पड़िए साहब, आपके काम की बात है। जैसा आलसू जो लड़का होता है ना, वो मैथमेटिक्स की बुक लेता है तो सम देखता है, मगर वो कैलकुलेशन कर स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं जाता है। ये झंझट में क्या पढ़ना, लास्ट पेज के ऊपर उसका आंसर तो दिया ही, आप आंसर ले लो। तो दक्षिणामूर्ति उपनिषद है, इसमें शौनक और मार्कंडेय का संवाद है, वहां पर प्रश्न पूछा जाता है, किम तत् परम रहस्य शिवम शिव तत्व ज्ञानम। तो वो परम रहस्य जिसको शिव तत्व ज्ञान कहते हैं वो है क्या, अब लंबी चौड़ी चर्चा में नहीं पढ़ता हूं, लास्ट पेज खोल के आपको उत्तर दे देता हूं, मत पढ़िए आप कुछ। तो ऐसा उत्तर दिया गया है, जब परम रहस्य शिव तत्वज्ञान के बारे में पूछा गया तब, ये न दक्षिणा मुख शिव अपरोक्षीकृतो भवति तत् परम रहस्य शिव तत्वज्ञानम। तो शिव तत्वज्ञान है क्या, तो कहते हैं कि जिसके द्वारा दक्षिणाभिमुख शिव की अपरोक्षानुभूति होती है वही शिव तत्वज्ञान है, जिसके द्वारा दक्षिणाभिमुखी शिव की अपरोक्ष अनुभूति होती है इसको कहते हैं शिव तत्व ज्ञान। तो देखिए दक्षिणामूर्ति जिसको नमन किया ने, श्री दक्षिणामूर्ति नमः, वो दक्षिणामूर्ति सोपाधिक दृष्टिकोण से, सोपाधिक मतलब उपाधि वाला जो है वो उपाधि वाला कौन है, माया की उपाधि वाला ईश्वर, तो सोपाधिक तत्व की दृष्टि से ईश्वर है। दक्षिणामूर्ति मतलब कौन, ईश्वर को ये नमन है। और निरुपाधिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो निरपेक्ष ब्रह्म तत्व को ये नमन है। श्री दक्षिणामूर्तये इदम नमः, ऐसी जो बात आई ना, किसको है, सोपाधिक दृष्टिकोण से ईश्वर को नमन है, और निरुपाधिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ब्रह्म तत्व को ही ये नमन है। ऐसे देवता के ज्ञान से होता क्या है, तो पाप से तरण हो जाते हैं और मुक्ति हमें मिल जाती है। जैसा गीता में कहा, सर्व ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यति, और कृष्ण परमात्मा ने कहा, हे अर्जुन ज्ञान रूपी नौका में बैठ जा, और कुछ नहीं करना है, और मैं तुझे पाप समुद्र के उस पार ले जाऊंगा, पाप समुद्र के उपार ले जाऊंगा। सर्व ज्ञानम प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यति, संतरिष्यसि, तरिष्यसि शब्द बहुत अच्छा है, या ठोकर मारा गया ये पत्थर के साथ, वो शिला के साथ और पहुंचेगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा, संतरिष्यसि। मर एक ही काम है, किसमें बैठना है, ज्ञान रूपी नौका। और अर्जुन को कहा था किसने, कृष्ण परमात्मा ने, और सुन किसने लिया, आप लोगों ने, क्योंकि अभी आप जहां बैठे हो ने, ये क्या नाम है, प्रेमपुरी, ये प्रेमपुरी ज्ञान रूपी नौका है, और इसमें आपको बिठा दिया गया है। इतना ही इसके नाविक अदली बदली होते रहते, मगर आप हो ज्ञान रूपी नौका में, उतर जाओगे तो समझो गए, और बैठे रहोगे तो कभी न कभी तो पार पहुंच जाओगे। और कृष्ण ने यही कहा, कहा अर्जुन के लिए, आपने क्यों सुन लिया मुझे पता नहीं, चलो अच्छा है। तो यहां पर ये बात है कि ये दक्षिणामूर्ति रूपी जो देव है ना, उसका ज्ञान होने से क्या हो जाएगा, पाप से तरण हो जाएगा और मुक्ति को हम प्राप्त कर लेंगे। यह इमाम परम रहस्य शिव तत्व विद्याम वधीते सर्व पापे भ्यो मुक्तो भवति, ऐसा उपनिषदों ने कहा है। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव है, वही नामांतर करके दक्षिणामूर्ति बनकर हमारे सामने आते हैं, जीवों को अद्वैत की शिक्षा देने के लिए भगवान शिव ने गुरु का रूप लिया है, और वो रूप का नाम है, देखो अरूपी होते हुए रूप लिया, निराकार होते हुए साकार हुए, अव्यक्त होते हुए व्यक्त हुए, अशरीरी होते हुए शरीर धारण किया। क्यों, आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूं क्यों, ये गुरु का कर्तव्य है। और ऐसे जो गुरु हैं उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था, और ऐसे बैठे, इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। ये जो गोल है, ये पूर्णत्व क्या, सर्कल, सर्कल वर्तुल है, सर्कल इज ऑलवेज बिगिनिंगलेस, एनीथिंग विच इज बिगिनिंगलेस इज ऑल्सो एंडलेस। तो ये पूर्णत्व है, कि पूर्णत्व की प्राप्ति होती है कब, सत्व रजस और तमस से ऊपर उठ जाते, पार कर जाते, गुणातीत हो जाते। अच्छा और क्या, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीरों से तादात्म्य तोड़ देते हैं तो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की तमाम त्रिपुट से असंग हो जाते हैं तो हम पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी त्रिपुटी, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की त्रिपुटी, नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तविक, मैं एक केवल सत्य हूं, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, दृष्टा दृश्य और दृष्टि, जीव ईश्वर और जगत, ऐसी ब्रह्मा विष्णु महेश जितनी जितनी त्रिपुटियां हैं, वो त्रिपुटियों से नाता जो तोड़ देता है वो पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए दक्षिणामूर्ति भगवान है, जब बैठे थे ज्ञान देने के लिए, तो ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठे हैं। दक्षिणाभिमुखा, और उनका मुख दक्षिण दिशा में है, ऐसी मान्यता है कि यमराज दक्षिण दिशा से आता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए हमारी आपकी बात छोड़ दिए, भीष्म पिता बाण सैया के ऊपर सोए थे, क्यों? उत्तराभिमुख, उत्तरायण की राह देख रहे थे प्राण छोड़ने के लिए, उनको इच्छा मृत्यु वरदान था। तो इसलिए दक्षिणामूर्ति का महत्व है कि गुरु का मुंह कौन सी दिशा में, दक्षिणामूर्ति, और जो गुरु का मुंह दक्षिणामूर्ति दक्षिण दिशा की ओर है, यमराज के सामने, वहां यमराज आ ही नहीं सकता है, तो मैं उसके शरण में जाता हूं और उसको मैं कहता हूं श्री दक्षिणामूर्तये नमः। और कैसे गुरु है, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। वट वृक्ष के नीचे गुरु बैठे हैं, शिष्य सुनने वाले वृद्ध हैं और गुरु युवान है। ये गुरु ऐसे हैं जो बोलते नहीं है मुख से कुछ भी। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, मर मौन क्यों रखा है, मौन रखा भी है और नहीं है, क्योंकि ज्ञान मुद्रा है, समझना है तो समझो या नहीं समझना है तो नहीं समझो। अच्छे गुरु थे, उनका गला कभी खराब नहीं हुआ। बोलते बोलते हम थक गए, पर उन्होंने तो खाली ज्ञान मुद्रा रख ली दक्षिणामूर्ति ने। और क्यों, शिष्यास्तु छिन्न संशया, सब संशय को समाप्त करने के लिए, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो स्वामी जी, इसका मतलब यही हुआ ना कि गुरु शिव स्वरूप बन गए, गलत बात। गुरु कभी शिव स्वरूप नहीं बन सकता है, क्योंकि जो गुरु है उसका देह है, और देह है वो देश काल से परिच्छिन्न है, और जो ईश्वर है देश काल से अपरिच्छिन्न है। तो गुरु ईश्वर नहीं बनता है, ईश्वर गुरु बनता है, शिष्यों का संदेह का है इसका छेदन करने के लिए। समझे नहीं हम, और नमन क्यों करते हैं इसको, हम ऐसे वैसे नमन नहीं करते हैं दक्षिणामूर्ति को। तो स्वामी जी, दक्षिणा यानी क्या? अरे एक दफा तो समझाया, और भी समझा दो, और भी समझाते थे। दक्षिणा का अर्थ होता है बुद्धि संस्कृत में, हम नहीं पढ़े तो मैं बताता हूं। दक्षिणा मतलब शेमुखी, बुद्धि, शेमुखी मतलब बुद्धि। दक्षिणा मूर्तये नमः, वो गुरु को नमन करते हैं जिसके पास बुद्धि है, मगर कैसी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि उसके पास है और वो दूसरे को प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। श्री दक्षिणा मूर्तये नमः, बुद्धि प्रदान साधन है आत्म साक्षात्कार के अंदर। एषु सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशते, दर्शते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, माने साक्षात्कार नहीं होगा, और वो बुद्धि का नाम ही है दक्षिणा, साक्षात्कार दक्षिणा का विषय है, ऐसा कठोर परिषद के द्वारा भी समझाया गया है। दक्षिणामूर्ति, श्री दक्षिणामूर्ति, समझ लो क्या कहा गया, श्री दक्षिणामूर्ति, श्री क्यों लगाया गया भाई? तो श्री का मतलब है जो अनादि है, श्री का मतलब है जो अनंत है, ऐसे श्री भी मत लिखना किसके आगे बिना समझे सूझे। श्री का मतलब अनादि है, अनंत है, और जो माया शक्ति संपन्न है, माया शक्ति है, उसका नाम है श्री। तो अनादि, अनंत और माया शक्ति संपन्न, उसका नाम है श्री, श्री दक्षिणामूर्ते। अब संस्कृत नहीं आते, मैं थोड़ा समझना, दक्षिणा तो दक्षिण और अमूर्ति, दक्षिण अमूर्ति, दक्षिण प्लस अमूर्ति, और इधर चला जाएगा तो दक्षिणा मूर्ति ऐसा शब्द हो जाएगा। तो मैं समझाता हूं, श्री समझा, श्री दक्षिण, दक्षिण मतलब क्या, दक्षिण मतलब उत्पत्ति स्थिति लय करने का सामर्थ्य जिसमें है उसको दक्षिण कहा जाता है। तो श्री और दक्षिण प्लस अमूर्ति, मूर्ति मतलब जो आकार है हो, मूर्ति मतलब जो विग्रह है वो मूर्ति मतलब सामने दिखाई देता है वो, तो उसको नमन नहीं करना है मूर्ति मूर्ति को। श्री दक्षिण अमूर्तये नमः, तो जो अमूर्त है जिसकी कोई मूर्ति नहीं जो निराकार है वो तत्व को मैं नमन करता हूं। विग्रह मूर्ति रहित है, अव्यक्त है, निराकार है, अचिंत है, अमूर्ति है उसको। और कृष्ण परमात्मा ने यही संदेश गीता में दिया है, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं तो अव्यक्त मूर्ति हूं, दिखाई नहीं देने वाली मूर्ति हूं, अमूर्त हूं। और ऐसे जो अमूर्त हैं, दक्षिण हैं, श्री हैं, श्री दक्षिण अमूर्त मूर्तये इदं नमः, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः, श्री दक्षिण मूर्तये नमः। अच्छा, ऐसे जो गुरु हैं भाई, उसको हम नमन क्यों करते हैं? दक्षिणा मूर्ति नमः क्यों? तो कहते हैं वो तो ज्ञान प्रदाता है, अपरोक्ष ज्ञान प्रदाय संप्रदाय से अलंकृत है, इसलिए तो नमन करते हैं। मगर और आगे बात बताता हूं, गुरु के अंदर तीन चीज होती है, गुरु के अंदर तीन चीज होती है। पूर्णावती से पहले बात कर रहा हूं, ये मंत्र आज खत्म करेंगे। गुरु के अंदर तीन चीज होती है, और तीन क्या होती है? एक होती है ज्ञान शक्ति, हाँ तो हमको पता है। अच्छा, दूसरी बात नहीं पता, बताता हूं। ये गुरु के अंदर एक होती है इच्छा शक्ति। स्वामी जी, गुरु को भी इच्छा होती है? हम तो समझते हैं गुरु मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब वासना इच्छा से रहित। नहीं, गुरु के अंदर भी शक्ति है। पहली शक्ति क्या बोला? ज्ञान शक्ति। दूसरी शक्ति क्या? इच्छा शक्ति। तीसरी शक्ति क्या? क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति मतलब क्या? तो गुरु के अंदर एक ही इच्छा बची है साक्षात्कार होते हुए भी, क्या? अन्य के अज्ञान का संहार करना, बस इतनी इच्छा बची उसकी। अन्य के अज्ञान का संहार करना, और संहार के द्वारा उसका दुख दूर करना, अन्य का दुख दूर करने की इच्छा पड़ी। इच्छा तो हमारी सबकी होती है, मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो सामर्थ्य नहीं होता, क्रिया शक्ति नहीं होती, तो सद्गुरु के पास है। अन्य की अविद्या है उसका नाश करना चाहते हो, अन्य का दुख दूर करना चाहते हो, मगर उसके लिए क्रिया शक्ति चाहिए, तो क्रिया शक्ति है। कौन सी क्रिया शक्ति है? श्रोत्रियत्व ही उसकी क्रिया शक्ति है। इसलिए हम कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। नमन किसको करते हैं? जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है। श्रोत्रिय शास्त्र का ज्ञाता है, उसकी इच्छा तो है कि सबका अज्ञान दूर करे, मगर उसके लिए शास्त्र का ज्ञान चाहिए, तो श्रोत्रिय बनना पड़ता है उसको पहले। तो वो श्रोत्रिय उपनिषदों का रहस्य घोल घोल के पीता है और श्रोत्रिय बनता है। तो श्रोत्रिय है, इसका नाम है क्रिया शक्ति, और ज्ञान शक्ति तो है ही उसके पास, आप जानते हैं। तो सद्गुरु को नमन इसलिए करते हैं, उसके पास क्या है? ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, और क्रिया शक्ति है। क्यों उसको सबका अज्ञान दूर करने की इच्छा होती है? इसलिए होती है, अज्ञान से बड़ा दुख जगत में और कोई नहीं, सबसे बड़ा दुख है तो वह अज्ञान है। मेरे पास धन नहीं इसलिए मैं दुखी नहीं हूं साहब, आई एम अनहैप्पी बिकॉज आई एम इग्नोरेंट वन। पूरे विश्व के पूर्व के देश हैं जो जापान से आगे सब जितने जितने देश हैं, दे आर नॉलेज ओरिएंटेड, और जो पाश्चात्य जगत है पूरा, दे आर एक्शन ओरिएंटेड। हम नॉलेज ओरिएंटेड हैं। तो देखिए, हमको पता है कि क्यों ज्ञान चाहिए, अज्ञान से बड़ा दुखी नहीं है कोई, और अज्ञान दूर हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। और अज्ञान से दूर और अज्ञान का नाश कौन करा सकता है? तो सद्गुरु करा सकते हैं। सद्गुरु की कृपा चाहिए, उसकी करुणा चाहिए, और ये दोनों प्राप्त करने के लिए ईश्वर को ही गुरु का रूप लेना पड़ता है। तो ईश्वर ही गुरु का रूप लेकर आते हैं, इसलिए बार बार आपने सुना है गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला उपाय। आगे की बात मैं नहीं कहता हूं, आपको पता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ज्ञान से बड़ा, देखिए, ज्ञान से बड़ा कोई पुण्य नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं। और सद्गुरु के अंदर ये सामर्थ्य है, अज्ञान मिटाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए हम कहते हैं श्री गुरुमूर्ते नमः, और शास्त्र उपनिषद तो कहते हैं ईश्वर गुरुरात्मेति। ईश्वर गुरु और आत्मा सब एक ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। आगे कहा शास्त्र ने हमें, परमाद्वैत विज्ञानम कृपया वै ददाति, जिसकी कृपा से अद्वैत वेदांत का ज्ञान हमें मिलता है वही गुरु है, और ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। योग वशिष्ठ एक अच्छी बात करता है, कहता है स अयम गुरु हूं, गुरु साक्षात शिव एव न संशय। जब राम जी को उपदेश दिया वशिष्ठ जी ने, तब ये बात उनको बताई गई कि भगवान शंकर हैं। बस समझ ले तू कि जो गुरु है ना वो भगवान शंकर है, और शंकर ही गुरु बनते हैं। स्वयं गुरु गुरु साक्षात शिव एव न संशय। इसलिए आपको पता होगा कि जब रावण के ऊपर चढ़ाई करने की लंका गए तो पहले कौन सा मंदिर बनाया राम ने, रामेश्वर, मतलब शंकर का मंदिर है, ठीक है ना। तो ये बात है, तो हम क्यों गुरु को प्रणाम करते हैं ये यहां पर हमें समझाया गया है। गुरु ईश्वर दो नहीं है, एक ही है, देह रूपे गुरु है, देह रूप में गुरु है, एक समझना बात, मगर देह के भीतर ईश्वर का दर्शन करना है। और ईश्वर है वो शिव है। अब मैं शिव क्या है, क्यों है वो समझाता हूं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी तो क्रिएटर है, सृष्टि को रचने वाले, विष्णु पालन पोषण करने वाले। अगर आप लोग धन वैभव विलास चाहते हो तो साहब विष्णु की पुजारी बन जाइए, मगर वैराग्य चाहते हो तो शंकर के पुजारी बन जाइए। मुझे दूसरी बात याद नहीं, मुझे इतना याद है हम छोटे बच्चे थे, हमारी मां एक मंत्र सिखाया था, नहीं बोलते तो खाना कभी नहीं देती थी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देही च पार्वती। और पार्वती मतलब क्या, बुद्धि। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम, गिरिजा गिरी, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत से जन्मी वो पार्वती। तो शंकर की पूजा क्यों, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। और मुझे याद है जब मैं साधु बन के चला गया तो मां बाप वापस लेने के लिए आए, वो बेचारे समझते नहीं थे, तो मां बाप थे ने, तो मैंने कहा तूने तो पढ़ाया था ये सब, तूने तो नहीं कहा था ये मंत्र नहीं बोलते तो खाना परोसती नहीं थी, तो रोने लगी। फिर मैं आपको सच बताता हूं, बहुत साल के बाद मैं वापस गया और मैंने कहा आज मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, जो मैं पढ़ना चाहता सब मैंने पढ़ लिया है, मैं जानना चाहता जान लिया, अब बोल आप कहते हैं तो मैं वापस आ जाऊंगा, अभी भी मैं नौकरी कर सकता हूं ना, मैं तो प्रोफेसर की डिग्री मेरे पास, बहुत पीएचडी तक पढ़ा हूं, कोई ना कोई कॉलेज दे देगी, मैं वापस आ जाऊं। नहीं नहीं भाई, अब जहां हो ठीक हो। देखिए परिवर्तन कैसे आता है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर देह को गुरु मानेंगे तो देह तो देश काल से परिच्छिन्न है, ये तो गुरु के अंदर ईश्वर को देखना है जो देश काल से अपरिच्छिन्न है। और ऐसा जो गुरु है ने उसके लिए कहा गया है श्री दक्षिणा मूर्तये नमः तस्मै श्री गुरु, श्री लगा दो फिर, तस्मै श्री गुरु मूर्तये श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। पातंजलि सूत्र कहता है पूर्वेशाम अपि गुरुः काले ना नवच्छेदात आदि मध्यांत शून्याय गुरुनाम गुरुवे नमः। और ऐसा ईश्वर जो गुरु बना है ना वो गुरु का भी गुरु है, क्योंकि ईश्वर ने ही गुरु का रूप धारण किया है। अंत में इदम नमः, मैं नमन करता हूं, तो क्या साष्टांग प्रणाम है, नहीं। तो क्या अहंकार को झुकाने की बात है, नहीं। तो क्या उपाधि भंग का उपदेश नमन में, नहीं। तो नमः, नमन मतलब क्या, नमः तो न मनः ऐसी बात है या अमनः ऐसा उपदेश, नहीं। तो नमन मतलब क्या तत्वार्थ में, तो शास्त्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो स्वात्मानः परमेश्वरे एकत्वेन समर्पणम। नमन मतलब क्या, तो समर्पण भाव की नमन है, मगर किसका समर्पण करना, तो जीव भाव का परमेश्वर में अर्पण करना ही सबसे बड़ा समर्पण है, और ऐसा समर्पण ही सच्चा नमन है। व्यक्ति का विराट में समर्पण, व्यक्ति का समष्टि में समर्पण, व्यक्ति का अस्तित्व में समर्पण, मूर्त का अमूर्त में समर्पण, रूप का अरूप में समर्पण, नामी का अनामी में, अंतवान का
अनंत में समर्पण ही सच्चा नमन है, इसलिए कहा गया इदम नमः तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम श्री दक्षिणा मूर्ते। निष्कर्ष में जीव भाव शरणागत्यार्थे अनात्म भाव समर्पणार्थे स्वात्म दर्शनार्थे सर्वात्म दर्शनार्थे अभेद दर्शनार्थे इदम नमः तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम श्री दक्षिणा मूर्ते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।